ओम शांति। आज का टॉपिक आध्यात्मिकता में मनोरंजन। हम आत्माओं की जो 16 कलाएं हैं उनमें से एक मनोरंजन की कला। एक छोटा बच्चा एक ऐसी दुनिया में जाता है जिसको कहते हैं वंडरलैंड। वंडरलैंड में एक ऐसी अलग सी दुनिया जिसका मनोरंजन बिल्कुल ही आनंदमय है, और जैसे ही वो बच्चा उस वंडरलैंड की दुनिया में एंट्री करता है तो सबसे पहले उसको उसके मनोरंजन के लिए अलग अलग प्रकार के चेहरे दिखाई देते हैं, जैसे कोई मिक्की माउस, टॉम एंड चेरी, ऐसे अलग अलग चेहरे उसके मनोरंजन के लिए। और फिर उससे कुछ आगे कुछ मूवीज काउंटर, कुछ लाइटिंग, कुछ ऐसे अलग अलग प्रकार के उसके मनोरंजन के लिए उस वंडरलैंड में कुछ सीनरीज देखता है। अब ये तो होगी एक स्थूल बात, लेकिन बाबा हमें करवा रहा है आध्यात्मिकता का मनोरंजन। तो अभी जो क्लास होगी आप इसी में मेडिटेशन योग भी कर सकते हो, आप अपना रूहानी सफर मनोरंजन के साथ भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही टॉपिक जो टाइटल है आध्यात्मिकता का मनोरंजन, मैं आत्मा अब जा रही हूं एक ऐसे वंडरलैंड परम धाम की ओर, जहां सबसे पहले एंट्री करते ही मुझे बाबा के साक्षात्कार होते हैं, शिव बाबा पिता रूप में। और बाबा को पिता रूप में देखते ही मुझ आत्मा में फरमान वरदार के गुण इमर्ज हो रहे हैं। जैसे लौकिक में भी हम किसी भी सीन को देखते हैं और ऐसे ही गुण हमारे भीतर आते हैं, और हम मनोरंजन का अर्थ कि जिसको देख करके हम स्वयं को भूल जाएं, समय को भूल जाएं और हम उसी सीन में पॉज हो जाएं, इसको कहते हैं मनोरंजन। तो ऐसे ही जिस सीन को हम देखते हैं और ऐसे ही गुण हमारे भीतर आते हैं। यदि हम कुछ बच्चों के सीन देखते हैं तो हम भी स्वयं को एक बच्चे समझ लेते हैं, ऐसे ही बाबा भी बाप रूप में, और बाबा को बाप रूप में देखते ही आत्मा के भीतर फरमान बरदार के गुण इमर्ज होते हैं। फिर बाप को टीचर के रूप में देखते ही आत्मा के भीतर समझदारी के गुण आते हैं, और सतगुरु के रूप में देखने से आज्ञाकारी, और चौथा साजन के रूप में देखने से वफादारी के गुण आ रहे हैं। तो ऐसे कुछ आगे एक लाइट शो। अब बाप दादा शिव बाबा सर्च लाइट में मेरे सामने, बाबा से सफेद रंग की किरणें, ऐसे अलग अलग किरणें, अलग अलग रंग, वायलेट कलर, बैंगनी कलर, ये कलर, ये रंग बाबा से निकलकर मुझ आत्मा में प्रवेश कर रहे हैं और मैं आत्मा आनंदमयी हो रही हूं। नेक्स्ट आसमानी कलर, और ये कलर मुझ आत्मा में ज्ञान के गुण भर रहा है। फिर ब्लू कलर, नीला रंग, ये रंग मुझ आत्मा में ज्ञान स्वरूप बना रहा है। ग्रीन, हरा कलर, इस कलर को देख मैं आत्मा प्रेम स्वरूप बनती जा रही हूं। जैसा रंग वैसे मुझ आत्मा में स्वरूप इमर्ज हो रहे हैं। येलो, पीला कलर सुख का, मैं सुख स्वरूप बनती जा रही हूं। ऑरेंज, संतरी रंग पवित्रता का स्वरूप। और लास्ट में रेड कलर, लाल रंग, लाल रंग शिव बाबा से निकलकर मुझ आत्मा में प्रवेश हो रहा है और मैं शक्ति स्वरूप बनती जा रही हूं। ऐसे में आत्मा बाबा से अलग अलग रंगों से अलग अलग स्वरूप और मुझ आत्मा का बाबा मनोरंजन कर रहे हैं। तो ऐसे उससे कुछ आगे म्यूजिक बाप दादा कह रहे हैं बच्चे, और बाप मेरे संग गीत गा रहे हैं। बाबा मुझ आत्मा को देखकर बोल रहे हैं वाह बच्चे वाह, और मैं आत्मा भी वाह बाबा वाह का गीत गा रही हूं। संगीत भी एक मनोरंजन है, संगीत भी आत्मा की एक खुराक है। ऐसे कुछ और आगे मैं आत्मा बढ़ती हूं, हंटिंग शिकार करना, क्योंकि ये भी तो एक मनोरंजन है। तो मैं आत्मा क्या देख रही हूं कि माया के अलग अलग रूप सामने आ रहे हैं और मैं आत्मा उनका शिकार कर रही हूं। माया कभी मोह के रूप में, कभी काम, कभी क्रोध, और मैं आत्मा एवर रेडी, जैसे ही माया सामने वैसी उसका शिकार। किसी भी जिस भी रूप में आ रही है उसी रूप में उसका शिकार। तो मनोरंजन के लिए फिर मैं आगे जहां पे अलग अलग तरीके की गेम्स हैं, तो एक वो गेम होती है जहां पे वो एक ट्रैक पे गाड़ी चलती है ऐसे ऊपर नीचे, तो मैं आत्मा अब उसका मनोरंजन कर रही हूं बाबा के साथ। लेकिन किसी भी मनोरंजन को तभी आनंद लिया जा सकता है जब हम उसके रूल्स को फॉलो करें। तो उस पर बैठने से हमें सीट बेल्ट पहननी होगी, हमें जो भी डायरेक्शन मिलती वो करेंगे, करेंगे तो हम उसका आनंद ले पाएंगे, और आनंद लेंगे तो हम किसी और को भी बता सकते हैं। और माना हम उस पर बैठ गए लेकिन सीट बेल्ट डालना भूल गए, तो जैसे ही वो ऊपर तो हम नीचे गिर जाएंगे। इसीलिए सावधानी भी रखनी है। मैं आत्मा अभी बाप दादा के साथ, बाबा मुझे ऐसे वतन की सैर करवा रहे हैं, कभी सूक्ष्म वतन, कभी परम धाम, कभी परम धाम, कभी सूक्ष्म वतन। ऐसे बाप मुझ आत्मा को भी मनोरंजन करवा रहे हैं। आगे मनोरंजन हमें भोजन से भी मिलता है, क्योंकि खास करके सोचा जाता है कि देखो अभी संगम में ब्राह्मणों को जब हम यहां के देखते हैं कि ब्राह्मणों के लिए बाबा के घर में कितने प्रकार के व्यंजन बनते हैं, और ब्राह्मणों को व्यंजन स्वाद भी बहुत लगते हैं। अभी संगम की ही तो बात है कि अभी कलयुग में भी अंत तक देखो जब भी श्राद्ध माना करते हैं तो ब्राह्मणों को ही बुलाते हैं तरह तरह के भोजन खिलाने के लिए। तो ये ब्राह्मणों के लिए भोजन भी एक मनोरंजन है, चाहे भूख लगे ना लगे लेकिन खाना है, ब्राह्मण बने ही भोजन के लिए, जन्म सिद्ध अधिकार। तो ये संगम की तो बात है जो अभी कल्प के अंत तक, कलयुग तक चली आ रही है। श्राद्ध माना तो ब्राह्मणों को पेट भर भोजन और बाद में दक्षिणा भी अलग से। तो नेक्स्ट क्लोथ, कपड़े। तो मैं आत्मा जैसे परम धाम में शिव बाबा के सामने, तो बाबा मुझ आत्मा को अलग अलग तरीके की ड्रेस पहना रहे हैं। बाबा कभी देव रूप की ड्रेस मुझ आत्मा को पहना रहे हैं, कभी पूज्य स्वरूप की, कभी ब्राह्मण स्वरूप की, कभी फरिश्ता की, और बाबा साथ में मेरी फोटो भी ले रहे हैं। और वो फोटो अभी सभी गैलरी शॉप में पहुंची हुई है। 5 स्वरूपों की फोटो जो बाबा ने मुझ आत्मा की ली और अभी स्थूल रूप में सभी के सामने। तो शॉपिंग करने में भी आता ना मजा, ये भी तो एक मनोरंजन का साधन है ना। खास करके तो हमारी माताएं शॉपिंग करने में बहुत खुश हैं, तो बाबा भी मुझे कैसी शॉपिंग करवा रहा है हाँ? बाबा ने भी एक मॉल खोला हुआ है और बाबा बोलते हैं बच्चे लूट लो जितना लूट सकते हो इसको, इस ज्ञान धन को, अभी भाग्य की कलम तुम्हारे हाथ में है, जैसा भाग्य बनाना चाहते हो बना लो। बाबा ने सेल लगाई हुई है तो हमें भी बाबा की इस सेल में भरपूर आनंद उठाना है। जो भी अलग अलग प्रकार की बाबा हमें गुण शक्तियां जो भी दे रहे हैं उनको जितना हो सके उसको लुटाओ, उसका आनंद लो। और मनोरंजन के बाद क्या होता है, जब हम मनोरंजन के लिए निकलते हैं हमारा चेहरा कैसा होता है, हर्षित मुख। तो बाबा ने एक मुरली में भी बोला था कि हर्षित मुखता ही ब्राह्मणों का संस्कार है, हर्षित मुखता ही ब्राह्मणों का संस्कार है। तो मनोरंजन करने के बाद हमारा चेहरा भी कैसा होता है, हर्षित मुख। और हर्षित मुख की बाबा ने पहचान भी बताई है, कौन सी पहचान, विष्णु स्वरूप में। हर्षित मुख विष्णु स्वरूप में दिखाई गई है, तो हमें भी ऐसे ही अभी इमर्ज करना है कि जैसे विष्णु शेषनाग की शैया पर लेटा हुआ है और चेहरा हर्षित, जैसे ज्ञान का मनन चिंतन, जो पाना था सो पा लिया, 5 विकारों को अपने नीचे। लेकिन शेषनाग के जो मुख दिखाए गए वो 6 दिखाए गए, 5 तो हम जानते हैं, काम क्रोध लोह मोह अहंकार, लेकिन जो छठा है वो है आलस्य। ब्राह्मण जीवन में सबसे बड़ा विकार वो है आलस्य, जब आलस आता है तो ही ये विकार हम पर हैवी होते हैं। तो हमें भी ऐसे ही इमर्ज करना है कि मैं आत्मा उस शेष नाग के ऊपर लेटी हुई हूं और मैं ज्ञान मनन चिंतन कर रही हूं, बाबा का वो प्यारा झूला, मैं बाबा के झूले में झूल रही हूं, ज्ञान और योग की रस्सियों से बाबा की बाहों में आत्मा झूल रही हूं। और ये जो हमारी 16 कलाएं थी, उन 16 कलाओं में से एक कला मनोरंजन की कला, तो ये जो टॉपिक भी था आध्यात्मिकता में मनोरंजन। ओम शांति।
ओम शांति। भाई जी ने बहुत अच्छे से अध्यात्म में मनोरंजन के बारे में बताया। सुनते दौरान एक मुरली याद आ रही थी, पहले थोड़ा सा उसको देखते हैं। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि मुझे नाचने और गाने वाले बच्चे पसंद हैं, नाचने और गाने वाले। नाचना माना क्या और गाना माना क्या? गाना क्या, बाबा कहते हर समय बाबा के प्रेम के गीत गाते रहो, हर समय बाबा की महिमा के गीत गाते रहो। और बाबा ने इसका फायदा भी बताया, अगर हर समय बाबा के महिमा के गीत गाते रहेंगे तो मुख से व्यर्थ बोल नहीं निकलेंगे। नाचना, नाचना माना क्या, बाबा ने कहा कि कर्म करते, हर कर्म करते जो भी आप बॉडी के पोज बनते हैं वो क्या है, आपकी नाचना, कर्म योग। कर्म योग सिखलाया ना बाबा ने, तो बाबा की याद में आप जो भी काम करते हो वो क्या हो गया, आपका नाचना। तो इस प्रकार अगर नाचते रहेंगे तो कोई भी साधारण कर्म आपसे नहीं होगा। तीसरा बाबा ने बताया कि नाचना गाना, और तीसरा क्या होता है, सुनना। उस समय सुनेंगे क्या, तो बाबा ने कहा कि हर समय कर्म करते हुए मुरली के पॉइंट्स जो हैं वो कान में सुनते रहें, वो मनन चलता रहे। इससे होगा क्या, इसका फायदा क्या बताया बाबा ने, इससे कोई भी व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ जो है विचार वो आपके मन में नहीं आएंगे। तो इस प्रकार बाबा ने मनोरंजन के लिए ये तीन चीजें बताई थी उस मुरली में, तो वो याद आ रही थी। तो अभी जो मुरली मुझे मिली है वो है 3 अप्रैल 1983 की, और शीर्षक है प्रथम और अंतिम पुरुषार्थ। प्रथम पुरुषार्थ क्या है हमारा? अंतिम पुरुषार्थ, अंतिम पुरुषार्थ नष्टो मोह स्मृति लब्धा। ठीक है, अगर किसी एक शब्द में बताना हो प्रथम और अंतिम पुरुषार्थ एक शब्द में, अशरीरी और कर्मातीत और चलो, हाँ जी फुल स्टॉप। ओके चलो देखते हैं बाबा ने क्या कहा। तो बाबा कहते हैं आज बेहद का बाप अपने बेहद की स्थिति में रहने वाले, बेहद की बुद्धि, बेहद की दृष्टि, बेहद की वृत्ति और बेहद के सेवाधारी ऐसे श्रेष्ठ बच्चों से मिलने साकार वतन में साकार तन में बेहद के स्थान पर आए हैं। बाबा ने कहा सारे ज्ञान और चारों ही सब्जेक्ट्स का मूल एक शब्द है बेहद। चारों सारे ज्ञान और चारों ही सब्जेक्ट्स का मूल क्या है? एक ही शब्द बेहद। इस बेहद शब्द के स्वरूप में स्वयं को स्थित करना ही इस ब्राह्मण जीवन का प्रथम और अंतिम पुरुषार्थ है। तो बाबा ने एक शब्द क्या बताया? प्रथम और अंतिम पुरुषार्थ बेहद। बाबा कहते कि प्रथम पुरुषार्थ क्या था हमारा? प्रथम पुरुषार्थ था बाप का बनना। बाप का बनना अर्थात मर जीवा बनना, और मर जीवा बनने का आधार क्या था? हद की देह से दूर बेहद की देही अभिमानी स्थिति में स्थित होना। तो हद से, प्रथम पुरुषार्थ हद से दूर बेहद में स्थित होना। और अंतिम पुरुषार्थ क्या बताया बाबा ने? बाबा कहते अंतिम पुरुषार्थ है आपका फरिश्ता बनना, और फरिश्ता अर्थात हद के रिश्तों से परे। तो वहां भी हद से परे बेहद में जाना। तो बाबा कहते आदि में और अंत में, शुरू स्टार्टिंग और अंत में, पुरुषार्थ और प्राप्ति में, लक्षण और लक्ष्य में एक शब्द जो कॉमन रहा वो क्या था? बेहद। आगे बाबा ने एक तो होमवर्क दिया और तीन स्टेजेस का वर्णन किया है। होमवर्क क्या दिया? बाबा कहते सभी अपनी अपनी हद की एक लिस्ट बनाओ और उसको चेक करो कि कितना हमने उसको पार कर लिया और क्या बाकी रहा। बाबा कहते हैं कि हद की लिस्ट बताने की आवश्यकता नहीं है, बच्चों की कापियां भरी पड़ी हैं हद की लिस्टों से। तो बाबा कहते हैं बच्चे जानते भी हैं वर्णन भी करते हैं। तीन स्टेजेस बाबा ने बताई। बाबा कहते हैं कि बच्चे जानते भी हैं और वर्णन भी करते हैं। बाबा कहते हैं कि बाबा वतन में बैठे टीचर्स और स्टूडेंट्स के भाषण देखते व सुनते हैं। बाबा कहते इस वतन में तो कैमरा अभी आया है, लेकिन बाप दादा शुरू से ही वतन में बैठे बच्चों के भाषण सुनते व देखते हैं। और बाबा सभी को मुबारक भी देते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं कि बच्चे क्या करते हैं, एक ज्ञान की पॉइंट को बहुत ही रमणीक तरीके से सभी के आगे पेश करते हैं। तो बचा क्या? तीसरा स्टेज। पहली स्टेज क्या बताई? पहली स्टेज जानना, दूसरी स्टेज वर्णन करना, और तीसरी स्टेज है पार करना। तो आगे बाबा ने बताया पार कैसे करना है, हद को पार। सभी हम किसी ना कहीं सूक्ष्म रूप से, सूर रूप से किसी ना किसी हद में फंसे हुए हैं। तो बाबा ने बताया उसको पार कैसे करना है। तो बाबा कहते हैं कि हद को पार करने की निशानी क्या दिखाई देगी व अनुभव होगी? हद को पार करने की निशानी क्या दिखाई देगी और अनुभव होगी, पार किया और उपराम बने। उपराम अर्थात डिटैचमेंट, उपराम अर्थात जो बाबा ने बताया, उपराम अर्थात उड़ती कला, उड़ती कला के समर्थ स्वरूप द्वारा कर्म किया और उड़े। कर्म की डाली में फंसना नहीं है, कर्म में फंस गए, किसी कोई कर्म कर रहे हैं हम, कर्म करते करते अगर ये मन में आ गया ये क्यों, ये ऐसा, ये वैसा, वो वैसा, तो मतलब हम कर्म में फंस गए। तो कर्म रूपी डाली में आकर कर्म करना और उड़े। आगे बाबा ने पांच डालियां बताई हैं। बाबा कहते इस कर्म रूपी कल्प वृक्ष में चार डालियां, पहले चार डालियां बताई और फिर बाद में जो पांचवी डाली है वो कहते बहुत आकर्षण वाली है। चार डालियां गोल्डन, सिल्वर, कॉपर और आयरन, ये चार डालियां। पांचवी डाली बाबा कहते बहुत ही आकर्षण वाली है। पांचवी डाली कौन सी? डायमंड, संगम युग। ये आकर्षण वाली क्यों? बाबा कहते कि संगम युग का हरेक कर्म बहुत ही श्रेष्ठ है। जो भी कर्म हम संगम पर करते हैं उसी का फल 21 जन्म तक चलता है, तो संगम का हर कर्म श्रेष्ठ कर्म है। तो बच्चे क्या करते, इस श्रेष्ठ कर्म रूपी डाली में, इस हीरे की डाली में फंस जाते। कैसे? जैसे मान लीजिए कोई सेवा की, अगर उस सेवा में यह भाव आ गया कि मैंने किया, मैंपन आ गया, तो मतलब कर्म तो बहुत श्रेष्ठ था, हीरे जैसा था कि इतनी सेवा की, लेकिन अगर मैंपन आ गया तो उस हीरे रूपी डाली में हम क्या गए? फंस गए। तो हमने क्या किया? कर्म तो बेहद का किया लेकिन मैंपन आ गया, तो हमने उसको क्या बना दिया? हद का। तो ये थी मुरली। इस मुरली को बाबा ने तीन भागों में विभाजित किया है। पहली ये सभी के प्रति, दूसरी सेवाधारियों के प्रति और तीसरी जो है वो माताओं के प्रति। सेवाधारियों के प्रति जो मुरली में दिया है, उससे पहले मैं एक मुरली और डिस्कस करना चाहता हूं, चर्चा करना चाहता हूं आपसे। वो बड़ी प्यारी सी लगती है मेरे को मुरली ना। दो कारण है उसके। एक कि वो जो मुरली है वो डबल सेवाधारियों के लिए है। डबल सेवाधारी अर्थात लौकिक सेवा भी और ईश्वरीय सेवा भी, माना गृहस्थी माना ट्रस्टी। और दूसरा जो मेन कारण है इस मुरली को जो मुझे पसंद है, कि इस मुरली में बाप दादा ने आपस में कुछ बातें की हैं। हम सोचते हैं ना कि बाप दादा वतन में बैठे क्या करते होंगे, क्या बात करते होंगे, तो इस मुरली में बाप दादा की जो आपस की बातें हैं वो बाबा ने बताई हैं। और उसको कहा क्या? चिट चैट, कि बाप दादा वतन में चिट चैट कर रहे थे। तो इस मुरली में क्या है कि बाप दादा मधुबन में डबल सेवाधारियों का, गृहस्थी माना ट्रस्टियों का एक ग्रुप आया हुआ था। तो इसको सुनना, फील करना इस चीज को कि बाप दादा वतन में बैठे क्या बातें कर रहे हैं। तो बाप दादा वतन में बैठे तो ब्रह्मा बाबा बोले शिव बाबा को कि आज मधुबन में मेरी भुजाएं आई हैं। तो शिव बाबा बोले ब्रह्मा बाबा से, ये मेरी रुद्रमाला है, ये सब मेरी रुद्रमाला के मणके हैं। आगे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा से बोले कि क्या ये सभी आपके राइट हैंड्स ही हैं या लेफ्ट हैंड्स भी हैं? राइट हैंड ही हैं या लेफ्ट हैंड भी हैं? राइट हैंड माना सदा समान, सदा स्वच्छ और सत्यवादी। तो ब्रह्मा बाबा मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए बोले कि इन सभी बच्चों का पोता मेल तो आपके पास ही है, तो वतन में बाप दादा के सामने सभी बच्चों का पोता मेल इमर्ज हुआ। और पोता मेल किस रूप में इमर्ज हुआ? एक घड़ी के रूप में, जिस घड़ी में चार भाग थे, चारों ही सब्जेक्ट्स के चार भाग थे और उनमें एक कांटा लगा हुआ था सभी में। तो बाप दादा आपस में बातें कर रहे थे कि समय की घड़ी और ये पुरुषार्थ की घड़ी, इन दोनों को देख रहे थे। और बाप दादा ने देखा कि समय की घड़ी तेज है और पुरुषार्थ की घड़ी थोड़ी स्लो है। तो बाप दादा बातें कर रहे थे कि दो सब्जेक्ट्स, दो भाग, घड़ी के दो भाग माना दो सब्जेक्ट्स में तो फिर भी बच्चों के 75% से अबव मार्क्स हैं और दो सब्जेक्ट्स में कम मार्क्स हैं। गैस करो कौन से दो सब्जेक्ट थे जिनमें 70% से सेवा में आगे जाते हैं, दूसरा सब्जेक्ट जिसमें ज्ञान में। तो दो सब्जेक्ट्स ये थे ज्ञान और सेवा, इनमें 75% से अबव मार्क्स से, और दो सब्जेक्ट्स क्या रहे योग और धारणा, इसमें हम ढीले हैं ना। तो बाप दादा कहते इन दो सब्जेक्ट्स में मार्क्स थोड़े कम थे। तो ये मुरली इस प्रकार चली। अब आते हैं अपनी मूल मुरली पे, सेवाधारियों के प्रति। इस मुरली में पहले बाबा ने बताया कि बाप दादा सभी निमित्त सेवाधारियों को किस रूप में देखते हैं। निमित्त सेवाधारी अर्थात फॉलो फादर करने वाले। इस मुरली की एक और विशेषता, इसमें डेफिनेशंस बहुत हैं। सेवाधारी, निमित्त सेवाधारी माना क्या, फॉलो फादर करना माना क्या। यहां पे बाबा ने पलंग की डेफिनेशन भी बताई, पलंग को भी बदला, वो भी देखेंगे आगे। तो निमित्त सेवाधारी अर्थात फॉलो फादर करने वाले। बाप कहते मैं भी तो सेवाधारी हूं ना, मैं भी सभी की सेवा करने आता हूं। मेरे भी जो भिन्न भिन्न रूप हैं, बाप, टीचर, सदगुरु, जो भी भिन्न भिन्न रूप हैं, सभी सेवा के निमित्त हैं। बाबा ने कहा सभी बच्चों को जन्म देते ही बाबा ने एक गिफ्ट दी। क्या गिफ्ट दी? सेवा की। फिर बाबा ने आगे सेवा कैसे करनी है उसके बारे में बताया। बाबा कहते कि सभी विशेष आत्माएं हैं और सब में अपनी अपनी विशेषताएं भरी पड़ी हैं। उन विशेषताओं की अगर चर्चा करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो बाबा ने कहा हम मैं सभी विशेष आत्माओं का बार बार स्मृति में एक चीज, एक बात बार बार स्मृति में दिलाता हूं कि जब भी कोई भी सेवा के क्षेत्र में जाते हो, सेवा का कोई प्लान बनाते हो, जहां प्रैक्टिकल में आते हो, तो सबसे पहले इस बात का ख्याल रखो कि स्वयं को बाप समान स्थिति में स्थित करो, फिर उस सेवा या सेवा को, सेवा का प्लान बनाओ या उसको प्रैक्टिकल में लाओ। तो पहली थिंग जो याद रखनी है वो क्या है, स्वयं को बाप समान स्थिति में स्थित करना। उसके बाद बाबा ने कहा कि जैसे बाप को सभी अपना कहते हैं, कोई ये नहीं कहता कि ये फलाने का बाप है या फलाने का बाप नहीं है, सभी क्या कहते हैं, मेरा बाबा, मेरा बाबा। तो सभी, तो बाबा ने कहा कि जो निमित्त सेवाधारी हैं, जब वो सेवा करने जाते हैं तो वो सेवा इस प्रकार करें कि सभी को ऐसा अनुभव हो कि यह सब हमारे हैं। मतलब सभी को अपनेपन का एहसास हो, जिनकी सेवा में आप जा रहे हो सभी को अपनेपन का एहसास हो। बाबा ने कहा कि सबसे पहला काम, पहले बाप ने भी यही किया, सभी को अपना बनाया। सभी बाप को क्या कहते हैं, सभी के मन से क्या निकलता है, मेरा बाबा। कोई ये नहीं कहेगा कि तेरा बाबा, क्या कहेंगे, मेरा बाबा। तो इसमें एक प्रसंग याद आता है मुझे भागवत का। भागवत में एक प्रसंग दिखाया गया है कि कृष्ण जो हैं वो रात समय एक बार मुरली बजाते हैं तो सभी गोपियां काम कर रही होती हैं तो अपना काम छोड़कर, सब छोड़कर भागती हैं बंसरी। जैसे ही मुरली सुनती है तो मुरली को सुनकर सभी गोपियां भागती हैं कृष्ण की ओर, सारा सामान पीछे छोड़कर। तो जब वो वहां पर पहुंचती हैं तो कृष्ण उन्हें चिढ़ाने के लिए, थोड़ा छेड़ने के लिए कहता कि इतनी रात को तुम क्यों आ गई, मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया, तुम इतनी रात को कहां आ गई। तो गोपियां तब जवाब देती हैं कृष्ण को कि कृष्ण तुम ये मत समझना कि हम तुमसे इसलिए प्यार करती हैं कि तुम भगवान हो, या तुम अखल ब्रह्मांड के मालिक हो, इसलिए हम तुमसे प्रेम करती हैं। लेकिन हम तुमसे प्रेम इसलिए करती हैं क्योंकि तुम प्रीत की रीत निभाना जानते हो। क्यों? क्योंकि तुम प्रीत की रीत निभाना जानते हो। तो बाबा भी तो यही कर रहा है ना, बाबा बार बार बोलता है, क्या बोलता है, मैं तुम्हारा सेवाधारी हूं, हाजिर हजूर हूं। तो बाबा देखो बार बार हमें बताता है कि कितनी किस तरह बाबा प्रीत की रीत निभा रहा है। हमें तो बाबा से प्यार करना भी नहीं आता, बाबा वो भी सिखा रहा है। लौकिक में कोई प्रेम प्रेम प्रेमी और प्रेमिका होंगे तो वो एक दूसरे को प्रेम करना नहीं सिखाएंगे, लेकिन यहां देखो बाबा हमें खुद से प्रेम करना भी सिखा रहा है। मुझे याद है 26 फरवरी की इस साल की जो अव्यक्त साकार मुरली थी, उसमें ना आखिरी जो मीठे मीठे बच्चे होते ना उसके ऊपर लाइन थी आखिरी, बाबा ने कहा, बाबा ने पूछा थोड़ा डांट के भी थोड़ा प्यार से भी, बाबा कहते बाप को ना याद करने की ऐसी कौन सी मुसीबत है, बाप को ना याद करने की ऐसी कौन सी मुसीबत है, क्या बाप को याद करना इतना मुश्किल है, कारण बताओ, है ना। तो मतलब बाबा कितने प्रेम से और कितने स्नेह से हमें खुद से प्यार करना सिखा रहे हैं। हमें तो प्रेम करना भी नहीं आता, तो इससे बड़ी प्रीत की रीत वो क्या निभाएंगे कि हमें खुद से प्रेम करना। बार बार हमें याद दिलवाते हैं कि तुम आत्मा हो और तुम मेरी संतान हो, तो कितने प्यार के साथ। अभी सभी एक सेकंड के लिए सीधे हो जाइए और एक सेकंड के लिए हम परम धाम की ओर चलेंगे। हम सभी भाई आत्माएं परम धाम में बाबा के सामने बाबा की स्नेह की किरणों में स्वयं को अनुभव कर रहे हैं। बाबा का स्नेह मन में उछाल उत्पन्न कर रहा है, कितना स्नेह कितना प्यार भरा आंचल है बाबा का। बाबा के पास बिल्कुल पास जाइए और बाबा से अपने दिल की बात कहिए, वापस आ जाइए इस साकार देह में। तो बाबा कितने प्यार से हमें पालना दे रहा है, हमें अपने साथ साथ चला रहा है। जहां कुछ गलती भी होती है तो बाबा क्या कहते हैं, बच्चे कोई बात नहीं आगे से मत करना, भूल जाओ। तो ये थी हमारी, आगे बाबा ने बताया सहयोग का रिटर्न। सभी जो सेवाधारी हैं वो क्या हैं, सहयोगी। तो बाबा कहते कि मैं सभी बच्चों के सहयोग का रिटर्न क्या देता हूं, स्नेह। स्नेह का स्नेह अर्थात, आगे बाबा ने स्नेह की डेफिनेशन बताई, स्नेह सहयोग, सहयोग की डेफिनेशन बताई, सहयोग अर्थात स्नेह के पात्र। तो बाबा ने कहा जब इतना स्नेह मिल रहा है तो देंगे भी क्या स्नेह, जब इतना स्नेह मिल रहा है तो दूसरों को देंगे भी क्या स्नेह। आपके हर कदम और हर नजर में दूसरों को क्या अनुभव होना चाहिए, स्नेह का। फिर आगे बाबा ने पलंग के बारे में चर्चा की थोड़ी सी, कि पलंग की डेफिनेशन आज से पलंग चारपाई के बारे में बताया बाबा ने कि चारपाई अब सिर्फ सोने का स्थान नहीं है। जब आप सेवा का, जब पलंग पे जाते हो तो सेवा के प्लान बनाओ, तो पलंग क्या है, प्लानिंग का स्थान। तो बाबा ने चारपाई पलंग की भी डेफिनेशन उसको भी चेंज किया, अब जब भी पलंग पे जाओ तो याद आए कि ये क्या है, प्लानिंग का स्थान। इसके बाद योजना बनानी सेवा की, चारपाई बिस्तर है ना मेरा पलंग ले लेना तो आगे माताओं के प्रति, माताओं को बाबा ने पूछा सदा क्या ऐसा अनुभव होता है कि तकदीर का सितारा चमक रहा है, जिस चमकते हुए सितारे को देख अन्य आत्माएं भी ऐसा बनने की प्रेरणा लें। और फिर आगे बाबा ने बताया माताएं तो सदा सुहागिन हैं, अविनाशी सुहाग की निशानी मिली हुई है। अविनाशी सुहाग, सुहाग अर्थात स्मृति, हर समय स्मृति रहे कि मैं कौन हूं और मैं किसकी हूं। तो सिर्फ माताएं ही नहीं, हम सभी भी क्या हैं, सुहागिन। हमारा साजन कौन, शिव बाबा। यहां पे मुझे एक और मुरली याद आ रही है, वो भी बहुत अच्छी है। तो बाबा ने उस मुरली में बताया कि जैसे हम सभी शिव साजन की सजनियां है ना, तो साजन और सजनी की शादी होती है ना, तो हमारी भी बाबा से शादी हुई, कौन सी हुई, लव मैरिज की या अरेंज मैरिज? लव नहीं, किसी की अकेली लव मैरिज भी हो सकती है, लव मैरिज। लव मैरिज भी दो प्रकार से होती है ना, एक एक भाग के होती है और ये होती, एक होती है लव कम अरेंज। जब घर वाले मान जाते हैं तो लव मैरिज क्या बन जाती है, लव कम अरेंज, और एक होती है भगा के शादी करनी, है ना। तो शुरू शुरू में तो बाबा ने मुझे लगता है ज्यादा लव मैरिजेज ही की, दादियां सभी भाग भाग के ही आई, है ना, तो वो सभी क्या थी, लव मैरिजेज, है ना। अब क्या है, अब ज्यादातर लव कम अरेंज मैरिजेज मान जाते हैं ना घर वाले, अब इतना दिक्कत नहीं है। तो इसमें बाबा ने बताया कि मेरी सभी के साथ क्या हुई है, लव मैरिज। और आपको पता है आप सभी की शादी हुई है तो शादी में क्या मिलता है, दहेज। तो दहेज क्या मिला है आपको, कुछ और भी। तो बाकी शादियों में तो लड़की के माता पिता दहेज देते हैं ना, इस शादी में स्वयं बाबा ने हमको दहेज दिया। दहेज में क्या दिया, बाबा कहते आपको एक अलौकिक ड्रेस मिली है और श्रृंगार का सेट। अलौकिक ड्रेस क्या है हमारी, जो भी बाबा ने हमें टाइटल्स दिए हैं उन टाइटल्स रूपी स्थिति, वो क्या है हमारी ड्रेस। जैसे मैं मास्टर सब शक्तिवान हूं, मैं विश्व कल्याणकारी हूं, मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूं, तो इन टाइटल की स्थिति रूपी ड्रेस, इन टाइटल्स में स्थित होना है और उस ड्रेस को पहनना है। बाबा कहते अब ये गंदी चमड़े वाली बदबू वाली ड्रेस नहीं पहननी। कई बच्चे हैं थोड़ी देर वो अच्छी वाली मेरी दहेज की ड्रेस पहनते हैं और फिर वापस ये गंदी चमड़े वाली ड्रेस पहन लेते हैं। तो ये थी ड्रेस। आगे हमें श्रृंगार के सेट भी मिले हैं। तो श्रृंगार में बाबा ने हमें क्या दिया, गुणों का श्रृंगार। खत्म करता हूं बस, गुणों का श्रृंगार। तो गुणों का श्रृंगार, अब एक दुल्हन सजती है तो पहले हाथों का श्रृंगार करेगी, गले का, कानों का, मस्तक का, पैरों का, सभी श्रृंगार करेगी ना। तो बाबा ने कहा कि जैसे मान लो आपका तिलक, आपकी बिंदी क्या है कि मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं। हाथों के कंगन क्या है हमारे कि जो भी कर्म करें वो आनंद स्वरूप स्थिति में स्थित होकर करें। कानों के कांटे क्या है हमारे कि जो भी बात सुने वो आनंद दिलाने वाली हो और दूसरों को भी आनंदित करे। और गले का श्रृंगार, गले का श्रृंगार अर्थात मुख से वही बोल निकले जो हमें दूसरों को भी आनंद दें और स्वयं की आनंद की स्थिति को बढ़ाएं। और पैरों के श्रृंगार, वो क्या होगा, हर कदम हमारा जो हो वो आनंद स्वरूप स्थिति में की ओर बढ़ने वाला हो। तो ये थे हमारे दहेज। फिर आगे माताओं को फिर ये कहा बाबा ने, और फिर अंत में एक प्रश्न पूछा बाबा ने कि हमारा ये जो आपकी कमाई है ये अखुट और अविनाशी कैसे है, ये जो कमाई हम रोज कर रहे हैं ये अखुट और अविनाशी कैसे है। तो बाबा ने बताया कि ये जो कमाई आपकी अखुट और अविनाशी इसलिए है कि इस कमाई को कोई चुरा नहीं सकता। जो स्थूल धन है अगर कोई चुरा सकता है, और अगर वो चुरा ले तो हमारे पास क्या बचेगा, कुछ नहीं, सारा वो ले गया तो हम क्या हो गए, जीरो। लेकिन ये जो हमारा धन है ये ऐसा है कि अगर कोई लूटेगा तो उसके पास भी उतना हो जाएगा और हमारे पास और बढ़ जाएगा। तो इसलिए ये हमारी कमाई क्या है, अखुट और अविनाशी। हम ढूंढते रहते हैं ना कि कोई मिले तो सही, ट्रेन में जैसे है ना, ट्रेन में कोई ना कोई बस मिले सही, टूट पड़ो थोड़ा सा। तो मतलब ये कि उन्हें कुछ ज्ञान की चर्चा। एक चीज पता क्या, जब ट्रेन में या किसी से अनजान व्यक्ति से बात करते हैं तो कुछ मटेरियल जैसे है ना अच्छा सा हो ताकि वो सुनना पसंद करें। जो मैं महसूस करता हूं जब बात करते हैं ना हम, एक पॉइंट जो सभी को कॉमन कि सभी भक्ति तो करते ही होते हैं ना, तो उनसे ये पूछो कि भक्ति जब करते हो तो क्या मन लगता है उसमें, तो आपको यही आंसर मिलेगा कि मन भक्ति में नहीं लगता। वहां से आप अपनी स्टार्टिंग करो, अपने ज्ञान की चर्चा। हाँ, तो फिर वो करें। अच्छा, ओम शांति।
ओम शांति। आज की जो मुझे मुरली मिली है 9 जनवरी 1985 की है। जिसका टाइटल है श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं की रूहानी पर्सनैलिटी। तो भाई जी ने मेन टॉपिक दिया था रूहानी पर्सनैलिटी के ऊपर। तो यहाँ पे जैसे टाइटल है कि श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं की, तो जब हम भाग्यवान आत्माएं हैं तो हमारा बाप भी भाग्य विधाता है। तो भाग्य विधाता बाप आज भाग्यवान श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख रहे थे। उसमें उन्होंने, बाबा ने देखा कि भाग्यवान तो सभी हैं, क्योंकि जब भाग्य विधाता के बने हैं वो हमारा बाप है, तो भाग्यवान तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार बन गया। फिर बाबा ने देखा कि भाग्यवान आत्माएं जो हैं उनकी श्रेष्ठ और अविनाशी लकीर जो है वो कितनी लंबी और कितनी गाढ़ी है, मतलब कितनी मोटी है, गहरी है। तो बाबा ने कहा कि जब आपका जन्म सिद्ध अधिकार है और सभी बच्चों का है जो भाग्य विधाता बाप के बने हैं, तो वो अधिकार में भी नंबरवार आ जाते हैं। जैसे बाबा अपनी साकार मुरली में भी बोलते हैं कि सभी नंबरवार बच्चे हैं। तो बाबा ने कहा कि वो अधिकार में नंबरवार क्यों होते हैं, क्योंकि वो स्वयं, पहले हमें स्वयं को अनुभव कराना होता है। जब हम खुद अनुभव करते हैं तो हम औरों को भी वो अनुभव करा सकते हैं। तो वो अनुभव की स्थिति सबकी समान नहीं है। माना श्रेष्ठ भाग्यवान भाग्यवान है, लेकिन श्रेष्ठ भाग्यवान, जैसे पद्मा पदम भाग्यवान, तो बाबा ने ऐसे अलग अलग कैटेगरीज दी थी। तो बाबा ने कहा कि इसी वजह से सब में अंतर आ जाता है कि कोई अनुभव के आधार पे, खुशी के आधार पे। फिर बाबा ने कहा कि अधिकारी बन उस खुशी को और उस नशे को हमें औरों को भी अनुभव कराना है। तो यहाँ पे बाबा ने तीन वर्ड यूज किए, अधिकार पहला था कि वो जन्म सिद्ध है, दूसरा फिर बाबा ने बोला अधिकारी बनना। अधिकार तो माना कि जैसे एक लौकिक में भी कोई फैमिली है तो उनके तीन बच्चे हैं, तो वो प्रॉपर्टी जो है वो तो तीनों का अधिकार है उस प्रॉपर्टी पे। लेकिन अधिकारी माना कि वो जब डिवाइड होती है, उनको बांटी जाती है, तो वो अधिकारी उतने उतने हिस्से के वो अधिकारी बन जाते हैं। फिर बाबा ने बोला कि अधिकारीपन की स्थिति, अधिकारीपन माना मालिकपन। तो मतलब कि बाबा कह रहे हैं कि आप अधिकारी भी हो, मतलब आपको मिल भी गई है, लेकिन हम उस स्वरूप में उसके अधिकारी, उसके मालिकपन की स्थिति में अभी तक नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि अधिकारीपन की स्थिति के लिए जरूरी है कि उस खुशी में, उस रूहानियत में और उस अलौकिक प्यार में हमें, जब तक हम खुद नहीं रहेंगे और दूसरों को भी अपने आप उस नशे का अनुभव होगा। तो फिर बाबा ने बोला कि ये अधिकारीपन की निशानी ही श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों की निशानी है, जिसमें बाबा ने बोला कि वो आपकी, जैसे स्थूल संपत्ति की अगर किसी के पास है तो वो अल्पकाल के उस नशे में रहेगा। उसकी हमें चलन और चेहरे से पता लगता है कि हाँ ये अपने नशे में है उस प्रॉपर्टी की। तो बाबा कहते हैं आपकी भी प्रॉपर्टी है उस नशे में रहना, रूहानियत में रहना। फिर उसके बाद बाबा ने यहाँ पे बोला कि जैसे हमारी जो रूहानी पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी का मतलब है व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी हर एक की होती है, चाहे वो एक छोटा बच्चा हो चाहे एक बड़ा हो। अब पर्सनैलिटी कैसे बनती है, व्यक्तित्व माना जो जिस व्यक्ति की, जिस आत्मा की जो क्वालिटी है, जो गुण है, उससे हर व्यक्ति की अपनी अपनी पर्सनैलिटी बनती है। तो बाबा ने बोला कि पर्सनैलिटी तो सबकी है, लेकिन रूहानी पर्सनैलिटी बनानी है। रूहानी पर्सनैलिटी माना उस नशे में रहना है कि हम किसके बच्चे हैं। फिर उसके बाद बाबा ने यहाँ पे बताया कि रूहानी पर्सनैलिटी के नशे में जो होंगे वो हमेशा अपनी, जैसे सूरज की दूर से किरणें चमकती आ रही हैं, ऐसे ही आपकी भी जो चमक है, रूहानियत जो है, वैसे ही बाबा कहते भी हैं कि चेहरे और चलन से रूहानियत की पता लगती है। तो बाबा ने बोला कि वो आपके भी चेहरे, चलन और हाव भाव से पता लगेगा, धारणाओं से पता लगेगा। तो बाबा ने बोला कि रूहानियत की जो पर्सनैलिटी है वो आपके भी चेहरे से जब दिखेगी, जैसे सूरज की किरणें दूर होते हुए भी पता लगता है कि किरणें उधर पड़ रही है, इसी तरह हमें भी, औरों को भी हमसे ये फीलिंग आएगी कि कहीं ना कहीं रूहानियत की, माना कि उस रूहानियत यहाँ पे ये शो कर रहा है, जितना मैंने समझा, कि दैवी गुणों की, मतलब हमारा व्यवहार कैसा है, हमारी जो हम कर्म करते हैं या किसी से बोलचाल भी है वो किस तरह की है, किस स्थिति की है। आज हम चाहे मतलब मैंने जो प्रैक्टिकल में देखा कि भले ही अगर हम ज्ञान में भी हैं लेकिन आपका अगर व्यवहार अच्छा नहीं है तो वो भी कहीं ना कहीं बाबा की डिससर्विस होती है हमसे। तो मतलब लौकिक में भी देखते हैं कि कितनी इस वजह से, सिर्फ बोलचाल की वजह से ही डिससर्विस हो जाती है। तो यहाँ पे बाबा वही रूहानी पर्सनैलिटी जो बता रहे हैं वो दैवी गुणों को शो कर रहे हैं। तो बाबा ने बोला कि जो रूहानी पर्सनैलिटी वाले होंगे उनको बाबा ने एक टाइटल दिया कि अल्लाह लोग कहे जाएंगे। अल्लाह लोग का मतलब है कि भगवान से उनका भगवान का टाइटल भी उनको दे देना। जैसे कृष्ण का गीता में, जबकि गीता सुनाई तो शिव भगवान बाबा ने, लेकिन टाइटल किसका दिया गया, कृष्ण का, क्योंकि उनके जो दैवी गुण है और जो बाप के गुण है तो वो कहीं ना कहीं कंपेयर करके, मतलब कि लोगों को तो नहीं पता कि हाँ वो निराकार है लेकिन वो कृष्ण को ही भगवान समझ लेते हैं। तो बाबा ने जो अल्लाह लोग टाइटल दिया वो कहीं ना कहीं कृष्ण की तरह, माना एक एग्जाम्पल है ये कि कृष्ण को भी हम अल्लाह लोग कहते हैं, जो एक तरह से भगवान में ही डूबे रहते हैं, उन्हीं की, जैसे कहते हैं जैसा संग वैसा रंग। तो जब हम एक के ही रंग में, एक के ही साथ रहेंगे तो वैसे ही उसकी क्वालिटी मेरे में भी आती रहेगी। तो यहाँ पे बाबा यही कह रहे थे कि अल्लाह लोग, माना कि दूर से उसकी जो चमक है और कहीं ना कहीं आपको देख के उनको लगेगा कि हाँ कुछ मिल रहा है, उसकी वजह, उसी आत्मा से वायुमंडल भी परिवर्तन होता है। जैसे कृष्ण की मूर्ति को अगर हम मंदिर में भी देखते रखते हैं, जो लोग रखते हैं तो वो देख देख के उनको खुश भी होते हैं कि कितना अच्छा स्वरूप है उनका, कोई बेटे के रूप में सोचता है, कोई किस रूप में, तो वो तो एक जड़ चित्र है। तो जड़ चित्र से लोग इतनी उम्मीद करते हैं। तो बाबा ने बोला कि जब मतलब चैतन्य जो हम हैं, जैसे बाबा ने हमें बना रहे हैं, तो बाबा ने कहा कि जब रूहानी पर्सनैलिटी आपकी होगी वो अल्लाह लोग, जो आपको टाइटल मैं दे रहा हूं, मतलब बाबा जो दे रहे हैं टाइटल, वो तभी आएगी जब आप अपनी उस रूहानियत में रहेंगे। फिर बाबा ने बोला कि जब वो मूर्ति, मैं मतलब ये एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रही हूं कि जब वो मूर्ति हम मंदिर में भी रखते हैं तो कहीं ना कहीं उस जगह का वातावरण भी चेंज होता है। मतलब हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में भी एक अच्छी वाइब्रेशंस के साथ जाते हैं, चाहे हम भले ही अंदर से परेशान होते हैं तो उस मूर्ति से ही हमें इतना आकर्षण हो जाते हैं। फिर दूसरा, उसको देख देख के हम खुश होते हैं, फिर हमें ऐसा लगता है कि नहीं इन्हीं से ही कुछ मिलेगा, हम कुछ पाने की उम्मीद भी उसी मूर्ति से करते हैं जबकि वो एक जड़ है। तो बाबा कहते हैं और आप चैतन्य हो, जब आप किसी के पास उस पर्सनैलिटी रूहानियत के साथ जाएंगे तो लोग भी अनुभव करेंगे कि हमें यहाँ से कुछ मिल रहा है। जैसे दादी प्रकाशमिनी का मैंने सुना था कि माना दादी जहां भी जाती हैं, बड़ी दादी, तो सबको लगता है कि अपनेपन का, और उनसे लगता है कि उनसे कोई भी बात शेयर करो, मैंने ये पढ़ा था कि उनसे कोई भी बात शेयर करें तो वो कहीं ना कहीं उसका सोल्यूशन जरूर मिलता है, और मिलता ही नहीं वो बल्कि करके भी देते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही आपके भी रूहानी पर्सनैलिटी हो, जैसे कि प्यासे के पास कुआं खुद जा रहे। तो फिर बाबा ने बोला कि क्या आप इस, फिर बाबा ने पूछा ये सब क्वालिटीज और गुण बता के कि क्या आपकी ऐसी रूहानी पर्सनैलिटी है, क्या आप अपने आप को मतलब ऐसा मानते हो, जानते हो अपने आप को, या फिर साधारण ही रूप में माना अपने आप को देखकर चल रहे हैं, खो तो मतलब साधारणता में ही रहते हैं। तो बाबा ने आगे एक और टाइटल दिया था कि मतलब पर्सनैलिटी के बाबा ने आगे डेफिनेशन जो दी कि साधारणता में भी महानता होनी चाहिए, क्योंकि उस भाग्य विधाता बाप के बच्चे हैं। तो बाबा ने बोला जब आप साधारण कर्म करते भी अपनी उस महानता में रहेंगे, कि उस नशे में रहेंगे, तभी आपका साधारण कर्म भी महान बनेगा। फिर बाबा ने कहा कि जैसे कितने ही विद्वान होंगे, चाहे वो शास्त्र ज्ञान हो, चाहे वो विज्ञान के फील्ड में हो, या किसी भी फील्ड में कोई कितनी ही महारत क्यों नहीं हासिल की हो, लेकिन फिर भी वो आपके आगे आके कहीं ना कहीं एक बारी ये बोलेंगे कि नहीं, इनकी जो स्थिति है, माना इनके अंदर जो चीज है वो कहीं ना कहीं अनोखी है इस दुनिया से, माना अलौकिक है। तो मैंने डायमंड हॉल में पिछली बार जब मैं आई थी तो मैंने एक सम्मेलन चल रहा था, उसमें एक साधु आए थे। तो उन्होंने बोला कि मुझे 40 इयर्स हो गए ये साधु का चोला लिए हुए, पर मुझे वो चीज, वो शांति, या मतलब शांति के लिए ही होते हैं साधु वैसे तो, जो शांति की वजह से इधर उधर जाते हैं। तो उन्होंने बोला कि मुझे 40 इयर्स हो गए लेकिन मुझे वो चीज, वो प्राप्ति अभी तक अनुभव नहीं हुई। और यहाँ पे मैं 7 डेज से आ रहा हूँ, मतलब 7 दिन हुए थे उनको आते हुए। कहते वो 40 साल की मेरी तपस्या ये 7 दिन में पूरी हुई है। माना कि वो साधु बन के भी उसको वो चीज नहीं मिली जो उसको 7 दिन में यहाँ पे मिल गई। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस लगा वो, कि कितने क्यों नहीं उन्होंने वेद शास्त्र पढ़े, गीता ज्ञान पढ़ा, क्या क्या नहीं पढ़ा होगा उन्होंने, लेकिन फिर भी वो चीज नहीं मिली जो हमें मिल गई, और वो भी इतनी आसानी से ही मिल गई एक तरह से। तो उन्होंने की वो 40 साल की, तो बाबा कह रहे हैं कि वो जितने भी आत्मज्ञानी हो, साइंटिस्ट हो, कोई भी हो, लेकिन आपके आगे कहीं ना कहीं वो नतमस्तक जरूर होंगे, कहीं ना कहीं आपको वो देखेंगे कि इनकी अनोखी और न्यारी स्थिति है। तो फिर उसके बाद बाबा ने बोला कि आप सारे विश्व की किसी भी फील्ड की या किसी की भी जन्म पत्रियों को मिला लो और अपनी जन्म पत्री को देखो कि आपको कौन मिला है। फिर बाबा ने कहा कि कार्य करते भी आप अलौकिक स्थिति में, माना उस अलग लोक जो बाबा ने टाइटल दिया था, कि उस स्थिति में रह के आपको कार्य करना है, तब आप साधारण से महानता में अनुभव करेंगे। फिर बाबा ने कहा शरीर भले ही पुराना है, माना आज की जो रॉयल्टी दिखती है लोगों की, चाहे वो ड्रेसेस सेंस हो या फिर उनकी जो भी व्हीकल्स हो या जो भी, जिस भी तरह से वो अपने आप को रॉयल अनुभव करते हैं, बाबा ने कहा कि आपका साधारण तन है, पुराना तन है, लेकिन महानता किस में है? तो बाबा ने बोला कि आपकी महानता आपके गुणों और आत्मा की विशेषता, आपकी विशेषता और आत्मा के गुणों से है। तो फिर बाबा ने बोला कि जो मतलब जितने भी लोग आएंगे वो बाद में यही हमें देख के सोचेंगे कि भले ही हम बाहर से साधारण हैं लेकिन अंदर से भरपूर हैं, और दूसरे लोग सोचेंगे कि हम बाहर से भरपूर हैं, स्थूल सुविधाएं सभी है लेकिन इंटरनली हम वीक हैं। तो यही था मुरली में मेन। फिर उसके बाद बाबा ने बोला कि बाबा ने भोले बच्चे भी देखे। अब भोले का यहाँ पे बाबा ने बताया कि भोले अर्थात कि जो बाप को भी नहीं पहचानते, माना कि बाप को सुन के भी बाप को नहीं पहचान पा रहे, अपने आप को नहीं पहचान पा रहे। तो बाबा ने कहा कि ये कितने भोले बच्चे हैं। फिर बाबा ने बोला कि इन भोलों के साथ ही मेरा भी पार्ट है। तो मुरली यही थी कि रूहानी पर्सनैलिटी का यहाँ पे मेन जो वो निकलता है कि साधारणता में भी महानता का अनुभव करना, और व्यक्तित्व माना वही कि अपने गुणों को और भी ज्यादा निखारना। फिर उसके बाद मधुबन वासियों से मिलन था। तो बाबा ने, मैंने मेन फोकस इसी पे ही किया था, आगे मैंने थोड़ा ही पढ़ा था, तो उसमें यह था कि मधुबन निवासियों की विशेषता है मधुरता, मतलब कि बोलचाल में मधुरता और स्नेह। इतना ही मैंने आगे ज्यादा फोकस नहीं किया था। तो ओम शांति।